मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज सितंबर का पहला दिन है, साल है 2015 और आज के इस FEIS.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इस स्वागत के बाद मैं सबसे पहले अपनी ओर से, अपने एकेडमी के सभी साथियों की ओर से, और सच पूछे तो आप सभी की ओर से विश्वास दुबे को बधाई देना चाहूंगा। वो बेमेतरा छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उनका मेल मिला है और उन्होंने लिखा है कि सर, आपके आशीर्वाद से मैं छत्तीसगढ़ पीएससी 2014 का प्री एग्जाम पास कर लिया हूं। सर, आपके डेली ऑडियो गाइडेंस का इस सफलता में बहुत ज्यादा योगदान रहा। मैं पिछले 8-9 महीने से डेली आपके इस संजीवनी को मैं पा रहा हूं। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन से मैं मेंस भी पास कर लूंगा। थैंक्स अ लॉट सर। तो विश्वास, इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और निश्चित रूप से मेंस में भी सफल हो, इसके लिए हम सभी की तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें कोई दो मत नहीं कि यदि लगातार तुम ऑडियो गाइडेंस से जुड़े रहे, अपने अंदर एनालिटिकल पावर डेवलप करते रहे, चीजों को पढ़ने का और देखने का तरीका बदलते रहे, तो विश्वास, चाहे स्टेट सिविल सर्विस हो, किसी भी स्टेट की बात हो, या इवन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिविल सर्विसेज हो, यूपीएससी की, ऐसा नहीं है कि वो हमारी पहुंच से बाहर की चीज होती हैं। अंततः जो सफल होने वाले लोग होते हैं वो हम लोगों में से ही एक होते हैं। अब ये बात अलग है कि उन हम लोगों में हम शामिल हैं या नहीं है। मित्रों, मुझे इसी के साथ ही एक अच्छा मेल मिला है जो अनुषा अग्रवाल का मेल है और मैं बताना चाहूंगा कि अनुषा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री क्वालिफाई किया था, सेकेंड में भी प्री क्वालिफाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों में ही वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई। प्री मेंस में उनके काफी कम नंबर थे, जो सेकेंड अटेम्प्ट में जो मेंस में वो जब बैठी तो उनके नंबर पहले की तुलना में काफी अच्छे रहे, हालांकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। और पिछले साल जो अक्टूबर नवंबर में जो सेकेंड बैच एकेडमी का हुआ था उसकी वे स्टूडेंट भी रही हैं। उन्होंने अपने कुछ अनुभव मेल के द्वारा शेयर किए हैं और उनके इस अनुभव को मैं आज आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूंगा। और दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं ये इस तरह के एक्सपीरियंस पिछले कुछ दिनों से लगातार, जब से सिविल सर्विस का प्री एग्जाम हुआ है, लगभग एक मेल मैं आप लोगों से शेयर करता हूं और उसके पीछे जो कारण है मैं बता भी चुका हूं। कारण सिर्फ ये है कि ताकि आप लोगों को भरोसा हो सके। मैं ये नहीं कहता कि यही ऑडियो गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर कहता हूं। वो ये है कि रेडियो न्यूज इंपॉर्टेंट है, कुछ अखबार पढ़ने इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल पावर डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, साथ ही कुछ अन्य बातें जो आपके अंदर कॉमन सेंस डेवलप करती हैं। तो डेफिनेटली जब इनके प्रैक्टिकल इफेक्ट अगर कोई लिखता है तो मुझे लगता है कि आप सबके साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, वो उन स्टूडेंट्स की बात है जिन्होंने इसका इस्तेमाल करके सफलता हासिल की है, ताकि आप लोगों में भी इसके प्रति एक विश्वास की भावना पैदा हो सके। और सच मानिए तो ये विश्वास की भावना भी आपको ही मदद करेगी, क्योंकि जब आपका विश्वास गहरा हो जाता है तो याद रखिए, जब विश्वास गहरा हो जाए तो वो आस्था में बदल जाता है, और जब आस्था गहरी हो जाती है तो आपको मालूम है कि पत्थर भी देवता बन जाते हैं। मित्रों, तो इसी क्रम में मैं आज अनुषा अग्रवाल के जो शब्द हैं वो बिल्कुल ज्यों के त्यों आपके सामने पढ़ रहा हूं। डियर सर, यूपीएससी प्री 2015 के पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड करने में क्लासेस और ऑडियो ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ज्योग्राफी की तैयारी मैप्स से करने से ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे। इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए क्वेश्चंस भी आसान लगे। AFEIS से जुड़ने से पहले मेरी इकोनॉमिक्स की समझ इतनी अच्छी नहीं थी। सर, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में मुझे कई लोगों से ये कॉम्प्लीमेंट मिला है कि मेरी एनालिसिस पावर काफ़ी डेवलप हो गई है, और ये कॉम्प्लीमेंट देने वाले वही लोग हैं जिनके साथ मैं पहले भी पढ़ाई किया करती थी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर सिंसियरली, अनुषा अग्रवाल। थैंक यू अनुषा, सबसे पहली तो इस बात के लिए कि तुमने एकेडमी की क्लासेस अटेंड करने के बाद उसका सही इस्तेमाल किया। मुझे मालूम है कि तुमसे फोन पर भी बात हुई थी और बहुत अच्छे स्कोर तुम्हारे रहे, और डेफिनेटली इस बार मैं बहुत होपफुल हूं तुम्हारी सफलता के लिए। हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो तुमने इसमें लिखी है वो ये है कि एक तो इकोनॉमिक्स की समझ डेवलप हो गई है, तो डेफिनेटली ये समझ तुमको थर्ड पेपर जो जनरल स्टडीज का होता है उसमें बहुत माइलेज देगी। और उससे भी बड़ी बात कि तुम्हारे फ्रेंड्स अब ये कहने लगे हैं कि तुम्हारी एनालिसिस पावर काफी डेवलप हो गई है। ये एनालिसिस पावर थ्रू आउट मेन एग्जामिनेशन के सारे पेपर्स में तुम्हारे जो आंसर्स होंगे उनमें एक चमक लाएगी, उनमें एक वजन लाएगी। तो इसके लिए बहुत बहुत हम सबकी शुभकामनाएं हैं, और तुमने मेल लिखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये अनुषा का एक मेल था, और भी दूसरे कई मेल्स मेरे पास आए हैं जिन्होंने प्री के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं मित्रों, लेकिन उन सबको डिटेल में पढ़ करके मैं आप लोगों का वक्त लेना नहीं चाहता। यदि आपको विश्वास होना होगा तो इसी तरह से एक एक पर विश्वास हो जाएगा, और अगर यदि विश्वास नहीं होना होगा तो मैं उनको आपके सामने भी प्रेजेंट करूं तो स्वाभाविक रूप से आपको विश्वास नहीं होगा। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग मेरी बातों को कितने सही तरीके से ग्रहण कर पाते हैं और कितने विश्वास के साथ ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग तरीके से, या कह लीजिए कि एक वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों के सामने रखूं, ताकि आप लोगों में एक नई सोच भी विकसित हो और इसके साथ ही साथ एक रिव्यू करने की ताकत भी पैदा हो। दोस्तों, हम लोग कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें मैंने बताया था आपको कि दो तरह की क्षमताएं होती हैं। हिंदी में हम उसके लिए क्षमता शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक नैसर्गिक होती है जो बहुत कम लोगों में होती है, और दूसरी जो हम अर्जित करते हैं, जो हम गेन करते हैं, जो हम एक्वायर करते हैं। मैं यहां एक चीज और भी रिपीट करना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी नैसर्गिक प्रतिभाओं को मैंने व्यर्थ में बर्बाद होते हुए देखा है, क्योंकि वो उसे संभाल कर नहीं रख पाए, उसे आगे नहीं बढ़ा पाए। क्योंकि याद रखिए कि कोई भी नैसर्गिक प्रतिभा शुरुआत में आपसे आपके पास पूरी तरह से अपने फूल खिले हुए रूप में, ब्लॉसम्स में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको नैसर्गिक प्रतिभा मिल गई है तो अपने सर्वोत्तम रूप में आपको मिली है, वो बीज के रूप में आपको मिली है, फिर इस बीज को आपको विकसित करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं दोस्तों, यहां थोड़ी सी मैं आपसे लिबर्टी लेना चाहूंगा, और वो ये कि हर में कुछ न कुछ प्रतिभा बीज रूप में मौजूद होती ही है। फर्क केवल इतना है कि जिनमें हम नैसर्गिक प्रतिभा देख रहे हैं वो उसी तरह से जैसे कि कोई बड़ा बीज है और हमें दिखाई दे रहा है ना। बड़े बीज होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, ये वास्तव में ये गेहूं का बीज है, आपको दिखाई दे रहा है, ये मक्के का बीज है, उससे भी बड़ा है, तो इसको हम बोएंगे तो मक्का आ जाएगा। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे आप सब जनरल स्टडीज की तैयारी कर ही रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि जो मशरूम होता है, एक मशरूम से और मशरूम कैसे पैदा होते हैं। आप देखिए कि उनके उस तरह से बीज नहीं होते, उनके डंठल भी नहीं लगाई जाती, मशरूम अपने आप से ही अंदर से ही उसमें एक विस्फोट सा होता है, बड़ा प्यारा सा हल्का सा विस्फोट होता है जिससे एयर निकलती है, और उस एयर निकलने के साथ ही छोटे छोटे बीज बिखर जाते हैं और उससे दूसरे मशरूम पैदा हो जाते हैं, तो उस बीज को आप अलग से उस तरीके से शायद रिकॉग्नाइज न कर पाए। तो ये जो अनआइडेंटिफाइड इनविजिबल जैसी जो नैसर्गिक प्रतिभाएं होती हैं वो सब हमारे अंदर हैं। ईश्वर ने मनुष्य की रचना फालतू में नहीं की है, उसने ढेर नहीं लगा दिए हैं, सड़े हुए बीज धरती पर नहीं भेजे हैं, है ना। ईश्वर की प्रतिभा है ये, या प्रकृति की देन है हम सब, और उसने हमें कुछ न कुछ विशेष बना करके ही भेजा है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, मालूम है? आप सब इस आधार पर अपने को इवेलुएट कीजिएगा। मैं ये भी नहीं मानता कि उसको रिकॉग्नाइज करने की प्रॉब्लम हो रही, कि हम अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर लोग इसी संकट में रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे उनके पेरेंट्स हों, चाहे पेरेंट्स खुद ही क्यों ना हो, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, या उनका पूरा उनकी पूरी की पूरी जिंदगी एक तरह से असफलताओं का सिलसिला बनी हुई होती है। ये किया तो असफल, वो किया तो असफल, वो किया तो असफल, न केवल प्रोफेशनल लाइफ में ही असफल बल्कि रिलेशनशिप में भी असफल, दोस्तों से झगड़े, घर परिवार से झगड़े, सबसे रिलेशन से झगड़े। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो वो ये कहते हैं कि नहीं, शायद हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे इस बात पर उतना ज्यादा यकीन नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्या कर सकते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने करने की ठान ली कि मुझे ये करना है, उसी के प्रति आप ईमानदार नहीं रहते। और होता क्या है, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी क्षमताओं को, अपनी इच्छाओं का गुलाम बना दिया है, अपने मन का गुलाम बना दिया है। मित्रों, आप जानना चाहेंगे कि अपनी इच्छाओं का और अपने मन का गुलाम बना देने का क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है। मैं बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फिलॉसफी में नहीं जा रहा हूं, मैं कोई आपके सामने सांख्य और वैशेषिक दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वो बघाने नहीं जा रहा हूं। मैं बड़े सिंपल से आपको एक तरह से पैरामीटर्स दे रहा हूं, आप उससे मूल्यांकन करके देख लीजिए। मान लीजिए कि आपने फैसला किया कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, या आपने फैसला किया कि आपको बिजनेस करना है, राइट? आपने फैसला कर लिया। तो जब आपने फैसला किया, उस समय कुछ तो सोच समझ करके फैसला किया होगा, हवा में तो फैसला नहीं कर लिया कि साहब एक 10-20 चिट डाल दी एक किसी डब्बे में और उसमें से एक चिट उठा ली और उसमें आ गई कि आपको आईएएस बनना है और आपने फैसला कर लिया। ऐसा नहीं होता है ना, आप किसी आधार पर फैसला करते हैं, आपको लगता है कि हां मैं कर सकता हूं, मैं बिजनेस कर सकता हूं, मैं इंजीनियर बन सकता हूं, मुझे खेती करनी चाहिए। तो उस समय जब हम फैसला करते हैं तो उसका कोई ना कोई आधार हमारी कैपेसिटी से जरूर होता है। लोग इस बात को बड़े गलत तरीके से लेते हैं कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। मैं इस बात को नहीं मानता दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको क्या मालूम, जो असफल होते हैं उन लोगों से पूछिए जो। तो मैं इसके जवाब में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सफल होते हैं उन लोगों से पूछिए, वो जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी में सफल होते हैं, और कुछ लोग हैं जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी में वो असफल हो रहे हैं। तो क्या है, सीधी सी बात है कि वो जो सफल हो रहे हैं उनको सफलता के सूत्र मालूम है। मैं रहस्य नहीं कह रहा हूं, ये कोई राज नहीं है, ये साइंस है। उनको वो फार्मूले मालूम है, उनको वो सूत्र मालूम है, और फार्मूले भी कोई ऐसे नहीं है जिसके लिए आपको बड़े आइंस्टीन के दिमाग की जरूरत पड़े कि आप अंतरिक्ष के रहस्यों को जानना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल फार्मूले हैं, उनकी चर्चा हम सब करेंगे। यहां जो सिंपल फार्मूला है, जो पैरामीटर्स मैं बता रहा हूं, जिसके आधार पर आप अपने अब तक की सफलताओं असफलताओं का मूल्यांकन कीजिएगा, और ये न केवल स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि किसी के लिए भी है, सबके लिए है, कि जो आपने फैसला किया उसके प्रति आप कितने ईमानदार रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी ही इच्छाओं और अपने ही मन की गुलामी के कारण आपने अपनी जो कैपेसिटी थी उसको प्रतिबंधित कर दिया, उसको लिमिटेड कर दिया, उसको दबा दिया, उसको कुचल दिया, उसकी हत्या कर दी, और यहां तक कि भ्रूण हत्या कर दी, इससे पहले कि वो थोड़ा सा अपना सिर निकाल पाता, वो बीज थोड़ा सा अंकुरित होकर के धरती को फोड़ करके अपनी मुंडी निकाल पाता, थोड़ी सी अपनी झलकी देख पाता, अपनी कोमल कोमल उंगलियां बाहर निकाल पाता, आपने उस पर पैर रख दिया या दूसरों को रखने दिया, क्योंकि ये चीज आपको सूट करती थी, आप यही चाहते थे। हम यही चाहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग मित्रों यही चाहते हैं, और जब हम यही चाहते हैं तो वो जो कैपेबिलिटी जो इमर्ज होनी थी, धीरे धीरे निकलनी थी, वो खत्म हो गई, और जब खत्म हो गई तो फिर हम कह देते हैं कि नहीं नहीं ये बीज खराब था, शायद हमने गलत बीज बोया, शायद हमने अपना मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया। और दोस्तों यही वो जगह है जहां पर आने के बाद वो जो अर्जित क्षमताएं जो आपके अंदर हो सकती थी वो खत्म हो जाती हैं। मित्रों, मैं जानता हूं कि जब मैं ये बात कहूंगा तो मेरी इन बातों को सुनने वाले दो अलग अलग दल बन जाएंगे। वो ये है कि जिनको सफलताएं मिल रही हैं वो कहेंगे कि सर सही कह रहे हैं, और जिनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं या और दूसरे कारणों से अपनी इच्छाओं के गुलाम बने हुए, वो कहेंगे हाँ हाँ सर, हम जानते हैं, उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है। जब परिस्थितियां होती है ना, तब पता चलता है कि हाँ सच्चाई क्या होती है। बात करना बहुत आसान है, लेकिन व्यावहारिक जीवन बड़े अलग तरीके की चीजों की मांग करता है। दोस्तों, ये आपके जवाब हो सकते हैं, लेकिन सफलता सफलताओं को इनसे कहीं कुछ लेना देना नहीं। उनको तो अपनी चीजें चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो वो आपके गले में माला पहना देगी विजय का, और यदि आप नहीं दे सकते तो बहुत दूसरे गले हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो वहां चली जाएगी। उसके लिए वरमालाओं को धारण करने वाले संख्या कम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अभी आपके ऊपर है कि आप अपने प्रति कितना निर्मम होकर के, कितना क्रूर होकर के, कितने निर्दयी होकर के सोच सकते हैं। तो मित्रों, इस पर हम लोग आगे और बातें करेंगे, फिलहाल इतना ही। दोस्तों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर, और कल के AIR न्यूज में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें दोस्तों हैं। कल के AIR न्यूज में आपने जो सबसे बड़ी और जो इंपॉर्टेंट और जो पहली ही खबर थी दोस्तों, वो पढ़ी, वो खबर थी आपके विधि आयोग की रिपोर्ट पर। विधि आयोग ने अभी जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, और 31 अगस्त के बाद उसका टर्म भी पूरा हो गया है। ये जो 20वां विधि आयोग गठित हुआ था दोस्तों, ये आपको जनरल स्टडीज का जो प्रीलिम्स होता है उसके लिए थोड़ी सी चीजें जाननी चाहिए, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं, और सजेस्ट भी करूंगा कि इसकी रिपोर्ट के बारे में आज अखबारों में जो कुछ भी छपा है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ें, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी ये होती है। और बहुत ज्यादा इसके चक्कर में भी मत पड़िएगा कि अब आप पूरी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, है ना, वो जनरल स्टडीज के पॉइंट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, और मुझे विश्वास है कि इस पर आप देखेंगे कि कुछ एडिटोरियल कमेंट्स भी आएंगे और आर्टिकल्स भी आएंगे, तो हमारी जरूरत वहां काफी कुछ पूरी हो जाएगी। अभी जो विधि आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें आप देखिए कि जो हाईलाइट किया गया है, चाहे वो AIR न्यूज में हो या कि न्यूज पेपर में, वो यही दिया है कि जो फांसी की सजा जो दी जाती है उसके लिए केवल दो में फांसी की सजा दी जाए। एक तो यह है कि आतंकवाद हो, आतंकवादी गतिविधियों में वो व्यक्ति शामिल रहा हो, और दूसरा वो कि देशद्रोह हो, यानी कि देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो, देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो, देशद्रोह का मामला हो। इन दो मामलों को छोड़कर के विधि आयोग ने कहा है कि फांसी की सजा को जनरली समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, अब उस पर मत जाइए कि मतभेद थे और आपस में क्या थे, हमारे उसको नहीं, वो तो न्यूज का हिस्सा होता है लेकिन हमारे काम की चीज नहीं है। आप देख रहे हैं मित्रों, इसके लिए मैंने शुरू में भी कुछ आप लोगों को आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं कि जब इस तरह की बातें उठती हैं, फांसी की जब बात उठती है, याकूब मेनन वाले में बात उठी थी और उस समय भी फांसी को कुछ लोग खत्म करने की बात कह रहे थे, तो कुछ लोगों ने आर्टिकल्स लिखे थे और अभी डेफिनेटली फिर से आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। खासकर दुनिया के बहुत से देशों ने अपने यहां से फांसी की सजा को खत्म कर दिया है, और विधि आयोग ने ये बात कही भी है कि ये देखने में आ रहा है कि फांसी की सजा देने के बावजूद अपराधों में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। हम ये कहें कि भाई एक भय से अपराध कम होते हैं, तो ऐसा ज्यादातर देखने में नहीं आ रहा है। फिर इसने ये भी दिया है कि जो फांसी की सजा जो पाने वाला जो वर्ग है वो बहुत ही नीचे का तबका होता है, मतलब गरीब लोग या अनपढ़ लोग, ज्यादातर जो फांसी की सजा दी जाती है वो उस तरह के लोग ही अभी तक पाते रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने उनको लगता है कि अब ये बात बहुत ज्यादा तर्कसंगत नहीं रह जाती है, बहुत ज्यादा न्यायोचित भी नहीं दिखाई देती है कि फांसी की सजा को उस तरीके से दूसरे अपराधों के लिए भी बनाए रखा जाए। मित्रों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट एक लंबे समय तक आपके काम आएगी, इसीलिए अखबारों में जो इसकी खबर आई है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और जब एडिटोरियल कमेंट्स और इस पर आर्टिकल्स आएंगे आपको उन्हें भी बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि इसके बारे में आप अपना व्यू एस्टेब्लिश कर सकें कि आप क्या चाहते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये पहली खबर थी। आज मेरा गला थोड़ा सा रुक रहा है दोस्तों, इसके लिए माफी चाहूंगा। दूसरी जो खबर थी फ्रेंड्स, वो थी वृद्धि दर को लेकर, कि हमारे अभी जो तीन महीने की जो वृद्धि दर जो दिखाई गई है वो थोड़ी सी कम है, आर्थिक वृद्धि दर थोड़ी सी कम शो कर रही है, लेकिन चलिए उस पर हम ज्यादा नहीं जाते। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल के जब मैं आपको मेल एक स्टूडेंट्स का पढ़ रहा था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उतना, तो उसने दिया था कि कॉमन सेंस के जरिए उसने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये बताया उन्होंने, जो मैंने कॉमन सेंस की बात की थी 7 क्वेश्चन से सॉल्व किए। मित्रों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, मुझे नहीं मालूम है कि ये किस सेट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो औद्योगिक मजदूर हैं, उनके लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जारी किया जाता है, जो रिलीज किया जाता है, उसे निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है, राइट। उसमें से 4 ऑप्शंस दिए थे, मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा दिया था द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तीसरा दिया था द लेबर ब्यूरो, और चौथा दिया था द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये 4 दिए थे। अब आपको ये बताना था कि इसमें से कौन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जारी करता है। देखिए, अगर आप रिजर्व बैंक पर, तो हर स्टूडेंट की तैयारी होती है और मालूम है कि रिजर्व बैंक क्या काम करता है। उसका काम लेबर कंज्यूमर इंडेक्स वगैरह जारी करना नहीं है, ये तो एक सेंट्रल हमारा बैंक है, एक सेंट्रल बैंक कहने का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट का एक केंद्रीय बैंक है, फेडरल बैंक है आप कह सकते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में हम बात करें, जो सभी बैंकों को एक तरह से नियमित करता है। तो उसका काम तो नहीं हो सकता कम से कम प्राइस इंडेक्स वगैरह जारी करेगा, इसके लिए तो दुनिया भर के आर्थिक संगठन बने हुए हैं। आपको जो कंफ्यूजन हो सकता, एक है फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, अब इसका काम ही होगा कार्मिक एवं प्रशिक्षण देना, और ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण कोई लेबर को नहीं देगा, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने वाला डिपार्टमेंट है, मतलब बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज को ट्रेनिंग देने वाला डिपार्टमेंट। अब जो बच जाता है वो द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और द लेबर ब्यूरो, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन होगा, क्योंकि इकोनॉमिक अफेयर भी है और इसके बाद है लेबर ब्यूरो। अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, मान लीजिए इसके बारे में आपने कहीं भी नहीं सुना है, कुछ भी नहीं सुना है, तो आपको लग सकता है कि यार ये जो लेबर ब्यूरो दिया हुआ है और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, औद्योगिक मजदूरों के लिए है, तो लेबर ब्यूरो अगर कोई अलग से बनाया गया होगा तो उसको कम से कम इस तरह के काम तो सौंपे जाएंगे। अगर इस काम को भी इकोनॉमिक अफेयर करेगा तो फिर लेबर ब्यूरो क्यों बना, और इकोनॉमिक अफेयर एक टोटल इकोनॉमिक अफेयर को लेकर के चलेगा, उसमें से एक लेबर के तत्व एलिमेंट को लेकर के क्यों चलेगा, कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूं, तब आप कह सकते हैं कि द लेबर ब्यूरो आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, नहीं होगा, अब आप अपने कॉमन सेंस का किस लेवल तक यूज कर सकते हैं ये इस पर डिपेंड करेगा। मित्रों ये चर्चा मैं आज आपसे क्यों कर रहा हूं, इस चर्चा के पीछे कारण है, जो मैं बार बार न्यूज सुनने की बात कहता हूं और बड़ी सतर्कता के साथ न्यूज सुनने की बात कहता हूं, वो क्यों कहता हूं। अगर आपने कल की न्यूज सुनी हो तो कल की न्यूज में एक ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा की है और उसमें दिया हुआ है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया कि अभी के 3 महीनों में हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 7% रहा, जबकि पिछले साल के इसी दौरान 7.1% रहा। इसको लेकर के बात की गई है और आज के अखबारों में आपने देखा भी है कि ये चिंता व्यक्त की गई है कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है वो पिछले साल की तुलना में अभी गिरा है, इसको लेकर के चिंता भी व्यक्त की गई है, राइट। अब होता क्या है कि जब हम न्यूज सुनते हैं तो हम अलर्ट नहीं रहते, हमने केवल आंकड़ा सुन लिया और आंकड़ा भी उलझाने वाला है तो हम भूल गए, लेकिन जो स्टूडेंट सतर्क होकर के सुनेगा वो सुनेगा कि इसको जारी किसने किया, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, याद नहीं कर रहा है वो केवल सुन रहा है, और जब वो सुन रहा है अगर आप सतर्क होकर के सुनते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारे दिमाग की विशेषता है, दिमाग की विशेषता है कि वो उसको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड कर देगा, आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। जैसे अगर आप किसी मोहल्ले में घूमें और कोई एक मकान ढूंढें तो आपको मकान नहीं मिल रहा है तो आप 10 लोगों से पूछेंगे कि भैया इस मकान का नंबर बताइए, ये कहां पर होगा, तो वो आपको बताएगा। तो ये जो 10 लोगों से जो आपने मकान का नंबर या एड्रेस पूछा है कि कहां होगा ये मकान, ये 10 के 10 आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और बाकी पूरे मोहल्ले में आप घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे, भटक रहे थे उस मकान को ढूंढने के लिए जहां आपको जाना है, उनका ध्यान आपको नहीं है, रह ही नहीं सकता, लेकिन इन 10 का ध्यान रह जाएगा, और इन 10 में उसका ध्यान लंबे समय तक रह जाएगा, जिसके बताने के तौर तरीके से आप प्रभावित हुए, व्यक्ति से प्रभावित हुए या उसके मकान से ही प्रभावित हुए, तो वो आपके दिमाग में और लंबे समय तक रह जाएगा, बस बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो मित्रों, इस सतर्कता का यही मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सतर्क होकर के सुन रहे हैं तो ये आपके दिमाग में अटक जाएगा कि जो सकल घरेलू उत्पाद के जो आंकड़े जारी करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। हो सकता है अगले साल पूछ दिया जाए, और पूछ दिया जाएगा तो ये जो आपने सतर्क होकर के सुना है ये आपके दिमाग में अटका रहेगा, और भले ही आप पूरी तरीके से उस समय पूरी कॉन्फिडेंस के साथ निशान न लगा सके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एकदम याद आ जाएगा, लेकिन मेरा दावा है ये हमारे दिमाग की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, और आपको अपने दिमाग के इस विशेषता पर यकीन करना चाहिए कि वो आपको सही तक पहुंचा देगा। ये उसकी एक क्षमता, अद्भुत क्षमता है, बशर्ते कि आपने सतर्कता के साथ उसको रजिस्टर्ड किया हो। राइट फ्रेंड्स, तो खासकर न्यूज सुनने के बारे में जो मैं आपको बात कह रहा था, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कहा भी था, कल आपसे वायदा किया था कि अब मैं पेपर के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के इस तरीके से आप लोगों को न्यूज और अखबारों के बारे में चर्चा किया करूंगा, तो उसका एक छोटा सा नमूना मैंने आज आपको दिया है ताकि आप और भरोसे के साथ न्यूज को सुन सकें। मित्रों, इसके बाद 2 खबरें और महत्वपूर्ण थी। एक तो ये थी कि जो कन्नड़ के लेखक हैं डॉक्टर M.M. कलबर्गी, जो कल थे, दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी, और इसको लेकर के पूरे देश में एक तरीके से बड़ी रोष व्याप्त है और खासकर चिंता भी व्याप्त है, और अखबारों में आपने देखा है कि आज उसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट्स भी हैं। ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मुझे ध्यान आ रहा है नरेंद्र दाभोलकर थे, उनकी भी हत्या की गई थी, और एक और भी थे गोविंद पंसारे, उनकी भी हत्या की गई थी, और खासकर ये वो लोग हैं जो अभी जो हमारे एक रूढ़िवादी समाज है, अंधविश्वासी समाज है, उसकी कुछ चीजों की आलोचना करते हैं। जैसे दाभोलकर तो एक तरह से वैज्ञानिक चेतना पैदा करने का काम कर रहे थे, जो अभी कलबर्गी जी थे ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। देखिए, मूर्ति ये बहुत सामान्य सी चीज है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी ही नहीं, भारत में तो शुरू से इस तरह के अभिव्यक्ति की आजादी रही है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि कबीर दास जो 1400 के आसपास हुए हैं, 1450 के आसपास, तुगलक के शासन काल में, नामी तुगलक है, तुगलक की आदेश हम एक तरह से मुहावरे के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो कबीर दास एक अनपढ़ व्यक्ति और किस तरीके से हर धर्म वालों के जो रूढ़िवादी या परंपराएं हैं उनका खंडन कर रहा है, मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है, वो पत्थरों को पूजने का पाथर जोड़ जोड़ कि यदि पत्थर को पूजा करने से भगवान मिल सकता है तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूं, यह बात वो व्यक्ति कह रहा है, और उस व्यक्ति की उस समय हत्या नहीं हुई तो उस समय का समाज क्या ज्यादा सामंजस्यपूर्ण समाज था, ज्यादा सहनशील समाज था, ज्यादा उदार समाज था, क्या उस समय अभिव्यक्ति की आजादी अभी की तुलना में ज्यादा थी, समझ में नहीं आता। दोस्तों, यह बहुत बहुत दुखद खबर है, और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, सच पूछे तो ये चेतना की बात है, और इसीलिए आज आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने दिया है कि हमारे अभी की जो सरकार है वो शायद सभी समस्याओं का जो समाधान है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में देखती है, आर्थिक विकास में देखती है, जबकि ऐसा नहीं है। उनको देखना होगा कि किस तरह से एक साइंटिफिक टेंपर समाज में पैदा किया जाए, क्योंकि यदि वो साइंटिफिक टेंपर पैदा नहीं हुआ तो जो समाज की हम जो संरचना करना चाह रहे हैं उस समाज की रचना करना काम कम से कम भारत जैसे वैविध्यपूर्ण देश में एक बहुत मुश्किल होगा। फिर पता लगेगा कि हम पूरे के पूरे आर्थिक विकास के बावजूद कहीं न कहीं एक बहुत ही संघर्षपूर्ण और चिंतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सामाजिक जो बनावट होगी वो वैज्ञानिक नहीं होगी। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है दोस्तों, आज आपको 2 एडिटोरियल कमेंट इकोनॉमिक टाइम्स के मिलेंगे और 2 एडिटोरियल कमेंट्स आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के भी मिलेंगे, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखिएगा कि कैसे संक्षिप्त में कितनी गहरी बातें और भाषा की बुनावट देखिए, वाक्यों की कसावट देखिए और तथ्यों को देखिए कि थोड़े से ही शब्दों में कितने ज्यादा से ज्यादा तथ्य ला दिए जाते हैं। मित्रों, अंतिम जो खबर थी वो खबर थी संथारा परंपरा को लेकर के, जो जैनियों की परंपरा है जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया था, उसे आत्महत्या मानते हुए जो इंडियन पेनल कोड की धारा 309 है जिसमें आत्महत्या को अपराध माना गया है उसके तहत उसको गलत ठहरा दिया था और पुलिस को आदेश दिया था कि जहां भी ऐसा होता है इसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो फिर जो जैन समुदाय है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था और कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मतलब उसमें पेपर में तो दिया कि 60 सेकेंड भी नहीं लगे और उस पर रोक लगा दी, राजस्थान हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है। अब उस पर सुनवाई होगी और उन्होंने अपनी टिप्पणी भी की है कि ये उस तरह का अपराध नहीं है क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इट मे बी ए आर्ट ऑफ डाइंग एज वेल एज द आर्ट ऑफ लिविंग, ये उन्होंने कमेंट भी किया है। अब इस पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या तथ्य हमारे सामने आते हैं। अभी दोस्तों इसी के साथ जुड़ा हुआ है पर्सनल लॉ और सिविल लॉ कि किस तरीके से देश में क्या सभी के लिए एक सिविल लॉ बनाया जाना चाहिए, नागरिक संहिता बनाई जानी चाहिए। हमारे संविधान में ऑलरेडी सभी संगठनों को अपने धार्मिक परंपराओं भाषा संस्कृति की रक्षा का अधिकार है, ये उसका हिस्सा है। तो इस तरह से करके आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में ढेर सारी एक मंथन वाली चीजें आपको मिलेंगी। तो इस इश्यू से रिलेटेड जब भी आपको कुछ पढ़ने को मिले या कोर्ट के कुछ डिसीजंस या टिप्पणियां आए तो उन पर आप ध्यान रखिएगा, वो आपको एक तरीके से आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे, आपको मजबूत बनाएंगे। मित्रों, अब मैं आज के पेपर्स क्लिपिंग्स पर नहीं आता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स थी उसकी मैंने आपसे चर्चा भी कर दी है। आपके सामने एक नॉलेज सेंटर अवेलेबल होता ही है, वहां आप पेपर क्लिपिंग्स को पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं ईमेल पर आता हूं। बहुत से मेल मिले हैं उन सभी दोस्तों को जिन्होंने मेल लिखे हैं, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें से कुछ के नाम मैं ले रहा हूं, वो है मयंक कुमार पोर्ट ब्लेयर से, निशा कुशवाहा इलाहाबाद, सुमित ठाकरे बालाघाट से, पूजा राजपूत, जितेंद्र कुमार पांडिचेरी से, अमरजीत सिंह श्रीगंगानगर से, रामू बर्मन नौगांव असम से, चेतन सातपुते बासमठ नगर से, गौरव पाल, मयंक जोध मंडला से, शैलेंद्र यादव सागर से, मयंक त्रिवेदी हरदोई से, रजिया और गौरव धीमान चंडीगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।